जोहार श्रोताओं, खनन का प्रभाव, विकास या विनाश की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। हमने आपसे वादा किया था, हम आपको खनन से जुड़े उन परिवारों की बात बताएंगे जिनको खनन कार्य के कारण से अपनी जमीन और गांव छोड़ के विस्थापित होना पड़ा है। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं ऐसे लोगों की आप बीती उनकी जुबानी।
नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं जेएम रंगीला, कोऑर्डिनेटर बोकारो श्रोता संघ झारखंड मोबाइल वाणी। विस्थापितों को न तो मुआवजा मिली, न अब तक नौकरी मिली। सीसीएल की धोरी प्रक्षेत्र के तारमी परियोजना में उपरबंधा गांव निवासी कृपाल महतो की खाता नंबर 7 के तहत 3 एकड़ लगभग जमीन 1990 में अधिग्रहित की गई थी। 24 साल गुजर जाने के पश्चात भी न तो इनके परिवार को मुआवजा मिली, न ही नौकरी। आइए इस संबंध में विस्थापित परिवार के बेनी महतो से बातचीत करते हैं। हाँ, तो आपका जमीन कितना गया है?
लगभग 3 एकड़ जमीन।
पूरा गांव का अगर हम पूछे तो कितने लोगों का और कितना एकड़ जमीन गया है?
लगभग 20 से 22 एकड़ जमीन पूरे गांव में गया है, 30-35 आदमी को।
क्या सोच के आप लोग जमीन दिए थे?
कुछ मिलेगा रोजगार के लिए।
तो अभी तक रोजगार कुछ नहीं मिला क्या?
कुछ नहीं मिला अभी।
अच्छा, जो सीसीएल की ओर से सीएसआर फंड और अन्य कई फंड लागू किए गए हैं जिससे गाँव वालों को बिजली, पानी, सड़क की सुविधा दी जाती है, वो सब सुविधाएं कुछ मिली क्या?
कुछ नहीं मिली अभी तक।
तो क्या आप जमीन देने के बाद में कैसा आपको महसूस हो रहा?
आज पछतावा महसूस हो रहा है।
किस बात का?
नहीं कुछ मिलने के कारण से।
हाँ तो मित्रों, आपने सुना कि सीसीएल में जमीन दे करके विस्थापित जो है वो बिल्कुल उदासीन है, वो आक्रोश में है। ना तो उनको आज तक मुआवजा मिली, ना ही नौकरी मिल पाई है। इस तरह से अगर गौर किया जाए तो विस्थापित लोगों की काफी दुर्दशा है और दुर्दशा में जीवन जीने को विवश है। धन्यवाद।
जादूवाड़ा में खदान था, राखा में खदान था और बहुत सारे खदान अभी भी चल रहा है। ऐसा ही हमारे क्षेत्र में यानी पोटका के इलाके में ऐसा ही खदान के जैसा अभी फैक्ट्री लगने जा रहा है, जिंदल स्टील और भूषण स्टील एंड पावर। अगर इस तरह का प्लांट बैठेगा तो यहाँ से बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे, यानी उन लोगों को गांव छोड़ के भागना पड़ेगा। अगर सरकार ने उन लोगों को विस्थापित होने से बचाने चाहेंगे तो उनको सबसे पहले कुछ जगह दें, घर दें और उनका स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा से माहौल पैदा करें, तभी हो सके यहां पर संभव होगा। धन्यवाद। अजय कुमार भकत, पोटका प्रखंड, पूर्वी सिंहभूम।
हेलो, नमस्कार, जोहार। मैं विभल महतो धनबाद से। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सीसीएल के द्वारा जमीन को खोखला बना दिया है, जिसके कारण यहां विस्थापन काफी बढ़ चुका है। रात हो या दिन हो, नीचे में जो कोयला निकाला जाता है उसकी आवाज गूंजता है, जिसके कारण बहुत से घर फट गए हैं। यहां तक कि जमीन खोखली होने के कारण कभी कभी अचानक जमीन धंस जाती है। धनबाद से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे बस्ती छतुटान, मुरलीडीह, पोदुवाड़ा, लखनपुर, कुमारटी इत्यादि 15-20 गांव इसके चपेट में आए हुए हैं, जो काफी भयभीत रहते हैं। और ये कोलियरी के कारण, खेती नहीं होने कारण लोग पलायन कर रहे हैं। दूसरी बात है, बीसीसीएल यहां के लोगों को कुछ मुआवजा नहीं दिया है। अगर दिया भी है तो उसी तरह का जिस प्रकार ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब बहुत थोड़ा किसी को मिला है, किसी को नहीं। मैंने 5% भी नहीं कर सकते हैं यहाँ के लोगों को नौकरी मिला है, बाकी लोगों को ऐसे ठग करके और चोरी छिपे गांव के अंदर से भी कोयला निकाल लिया गया है, जो घर के अंदर में भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। धन्यवाद। मैं दुर्बल महतो नंबर 6 पंचायत। थैंक यू।
हेलो, मैं ठाकुर नारायण महतो, ग्राम तारमी, टोला प्रबंधा बस्ती के से बोल रहा हूँ। मेरे गांव तारमी कोलियरी के आधा किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यहाँ लगभग 150 घर का बसिंदा है और करीब करीब 150 घर भी विस्थापन की स्थिति में है। यहाँ हेवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जिससे हम लोगों का मकान जर्जर हो गया है, जिसमें हम लोगों ने आंदोलन किए, उसमें एसडीओ साहब भी आके निरीक्षण किया और यहाँ के आदमियों, वासियों को संतवाना दिया। या प्रोफिशियल द्वारा, ऑफिशियल द्वारा ही आप लोग को उचित मुआवजा या रिपेयरिंग किया जाएगा, लेकिन आज तक हम लोगों को कुछ हुआ नहीं। ऑफिशियल में किसी तरह का रोजी रोजगार का उपलब्ध नहीं किया गया है। धन्यवाद।
जी हाँ श्रोताओं, इन अनुभवों से हमें साफ साफ पता चलता है कि खनन कार्य कैसे इन सारे लोगों की जिंदगी में विनाश की स्थिति लेके आया है। जब खनन से जमीन बंजर हो जाती है, पानी प्रदूषित हो जाता है और कुओं में पानी का स्तर गिरने लगता है, तो उन इलाके के लोगों को अपना गांव, घर और जमीन पीछे छोड़ के आजीविका के लिए विस्थापित का जीवन चुनना पड़ता है। बस यही नहीं, खनन कार्य में कोयले को साफ करने के लिए इतना पानी इस्तेमाल होता है कि स्थानीय लोगों के पास अपने बचे हुए जमीन में खेती करने तक का पानी नहीं बचता है।
साथ ही खदान में हुए विस्फोट से वहाँ के गांव, वहाँ के घर और दीवारों में आज दरार दिखने लगा है। कई इलाकों में जमीन धस जाने के कारण लोग बेघर हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत के एक तिहाई खान जहाँ से कोयला निकलता है, वहाँ कोई न कोई पर्यावरण के कानून तोड़े जाते हैं। एक ऐसे ही कानून है कोयले के खान को खनन समाप्त होने पर ठीक तरह से मिट्टी से भरना, ताकि लोग उन जगहों पर फिर से निसंकोच रह पाए। लेकिन इस कानून के बावजूद भी ठीक से खनन न बंद होने के कारण जमीन धसती जाती है और लोग मौत के शिकार हो जाते हैं।
खनन कार्य की वजह से सबसे पीड़ित लोगों में एक अहम संख्या आदिवासियों की है। खनन कार्य शुरू करने के लिए ऐसे आदिवासी परिवारों को विस्थापन से जूझना पड़ता है। झारखंड राज्य में ऐसे 8 आदिवासी इलाके हैं जिसके 4.4 लाख हेक्टेयर जमीन से सरकार खनिज उत्पादन के लिए या तो लोगों को विस्थापित कर चुकी है या करेगी। हाँ श्रोताओं, अपने मेहनत और मजदूरी से बनाए हुए घर, अपना जमीन जहाँ हजारों परिवार सालों से अपनी जिंदगी बिताए हैं, अपना गांव जहाँ उनका बचपन गुजरा है, वो खनन कार्य के कारण ऐसे ही बेघर और बेरोजगार हो रहे हैं।
श्रोताओं, इस अभियान में अब तक हमने यह चर्चा करी है कि खनन के पहले आज की खनन प्रभावित इलाके कैसे थे और खनन के कारण वहाँ के जंगल, जमीन और पर्यावरण पर किस तरह का असर पड़ा है। साथ ही में आज की कड़ी में हमने यह भी सुना कि किस तरह खनन प्रभावित क्षेत्र में पीड़ित परिवार को विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। इस अभियान की चौथी और अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि खनन का स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, किस तरह की बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं खनन से घिरे गांव। क्या आपके पास है कोई अनुभव जो आप झारखंड मोबाइल वाणी के श्रोताओं के साथ बांटना चाहेंगे, तो दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपने संदेश। और हाँ, अगले शुक्रवार शाम 7 बजे सुने इस अभियान की अगली कड़ी, खनन का प्रभाव, विकास या विनाश, क्या है आपकी राय।